स्वामी में भी नहीं आ सकता है।
सुदृष्टाखंड सुख में
और उस सपने का जीव कहां दृष्टि आती है, आत्मा का संग हो जाने के कारण से, क्योंकि आत्मा ने आकर के सतन में प्रवेश किया। अब जीव को आत्मा का संग हो जाने के कारण से अंधकार का जरा जरा वर्णन करता है। सबसे पहले आप श्याम जी के मंदिर जामनगर में आकर के कैसे सूत्र देंगे, फिर वह सूत्र लेकर के हमारे पास कौन आया? चौथे आसमान से श्याम महारानी अर्श की वाणी लेकर के तात्व ज्ञान को आए।
इनसे थे प्राप्त भई
कौन से थे? उनकी कृपा से सतपुरुष धनदेव जी श्याम महारानी जी की से ये सारा ज्ञान, ये सारा कृपा, ये सब तात्व ज्ञान जरा जरा जो परमतापति सब पक्षों के सुख है, ये उनकी मेहर से हमको मिली है।
एक गुण सृष्टि पहचाना,
परमधाम का ज्ञान, फिर त्रय गुण सृष्टि की पैदाइश कैसे हुई, कैसे गुण का आगमन हुआ, उनकी सारी पहचान, कौन सी त्रय तीन सृष्टियां, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि, इनके सारे भेद दातुं के द्वारा आकर के खुले और हमें पहचान हुई।
तीन स्वरूपों की बीतकर
आप स्वामी जी आप कहते हो सुंदर सार जी, मैंने भी तुम्हारे खातर तीन बार माया में आकर के तन धारण किया, हमको खेल दिखा मन का, हमसे पहले आप सामने कहते हो सुंदर शादी, मैंने जो तीन स्वरूप धारण किए, तीन बार जो माया में डाल करके तन धारण किया, अब उनकी लीला शुरू होती है। दुनिया भले उसको पहचाने या ना पहचाने, पर ऐसा साजी समझी कहते हैं कि तुम्हारे कारण मैंने तीन स्वरूप धारण किए, बसरी मंदिर और इन तीन स्वरूपों की जुदा जुदा लीला है, क्योंकि पहली सूरत का नाम ही बसरी है और दूसरे का मंकी है और तीसरी का बसरी सूरत मोहम्मद साहब और मंकी सूरत सतगुरुदेव चंदी महाराज और हकी सूरत आप स्वामी श्री ब्रह्मा जी पांचों शक्तियों के साथ, बसरी में दो तर्क आत्म अक्षर जोश संख्या और मस्की में आत्म दुल्हन कम और जोश नहीं था और जागृत बुद्ध, लेकिन जो हकी सूरत है उसके अंदर पांचों शक्तियां आकर के बैठी, तभी तो महामती कहलाए। श्री धनी जी का जोश आत्म दुल्हन हुक्म बुद्ध नूर मूल वतन ये पांचों शक्तियां मिल है श्री महा, और वह पांचों शक्तियों के स्वरूप जो है वो हकी सूरत आप स्वामी श्री करना जी महाराज ने स्वामी कहते इन तीनों स्वरूपों को तुम चीनो पहचानो
जन्म से लेकर,
अब इनकी बीतक तीनों स्वरूपों की अब जाहिर होती है जन्म से लेकर के आखिर तक की बीतक।
सो कहूं आगे संयनो,
सो कहूं आगे संयन, जो परम धाम की आत्मग्रम स्थिति है उनके आगे ही मैं इसको खोल करके कहता हूँ, क्योंकि दूसरा प्रश्न कि तुम आए कहाँ से हो, वो तो बता दिया कि मैं परम धाम मूल मिलाप से आया, अब तीसरा ये था कि मेरे हम आप हमारे पास ही क्यों आए हैं, तो समझी कहते हैं वो अब मैं अपनी संयन तुम मेरे परम धाम की आत्माएं हो, तब उस भेद को मैं खोल करके अब तुम्हारे सामने रखता हूँ।
ये चर्चा सब ऊपर,
ये चर्चा सब ऊपर, बड़े बड़े ग्रंथों की चर्चा आपने संसार में सुनी होगी, गीता की चर्चा सुनी होगी, रामायण की चर्चा सुनी होगी, भागवत की भी चर्चा सुनी होगी, पुराण की भी चर्चा सुनी होगी और बाइबल गुरु नानक देव जी के ग्रंथ की भी चर्चा सुनी होगी, किसी ने भी फिर कोई चर्चा लेकर के भी कोई भी भवसागर से बाहर आज दिन तक उतरा नहीं, क्योंकि उन ग्रंथों की चर्चा जो है वो अपरा शक्ति की। और ये चर्चा जो अब स्वामी श्री नानाजी श्री साहब और गुरुजन स्वरूप के अंदर लाके कह रहे, ये कहां की है? निराकार के बार, तीन बार के भी बार। एक चर्चा सबके ऊपर उस अखंड परमधाम की, जागृत बुद्ध के ज्ञान की। आज तक सकल जगत के अंदर चाहे भागवत है, चाहे गीता है, या वेद है, या प्राण है, किसी के अंदर भी जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं। इसलिए वो ग्रंथ जो है खाली हमारे प्रमाण साक्षी तो है, या प्राण या पुराण, एक आगत दो प्रमाण इनके मगज में दे। किसने आकर के खोले? श्री नानक जी ने। और खोल के दिए किसको? हमें। इनके मगज में दे, हम पास अंदर आए कि खोले? श्री नानक जी ने स्वयं आकर के इन ग्रंथों के मगज में दे, जो मगज पड़े हुए थे एक उन्हीं दातों से ला करके सबके खोल करके और दिए किसको? हम मौनों को, हम सुंदरचार को, के स्वयं इससे जागो और सोए हुए जो है अभी सुंदर छात्र उनको जगाओ। इस वाणी के बल से
सब मय वर्षा जायमान।
अब आइए, अब चौथे दिन की दूसरी सूरत जो मन की सतगुरु श्री धन देवचंद की है, उसका भेद शुरू हो रहा है। जब गया वर्ष 11, तब मन उपजो है विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा अवतार। किसके मन में यह विचार उपजा? श्यामा महारानी जी की आत्म स्थल में बैठी, उसका नाम है देवचंद। आप उनको भी आवाज बिठाओ, नहीं आवाज को, आप उनके मन में ये विचार उत्पन्न होता है। भूल के नाता खेल के तन में, सपने के तन में आकर के बैठ गए, कोई सुध नहीं रही कि मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा। बस वो जीव का संग करते साथ ही आत्म क्षमा महारानी भी भूल गई कि मैं परमधाम से आई हूँ, या मेरा सुंदर साथ मेरे साथ आया है, और या मेरे धनी रक्षा थी पालन में। मैं इतना विचार जरूर आया जब तन की आयु 11 वर्ष की हो गई कि मैं कौन, कौन बतावे हम कौन। कोई भी दुनिया का ग्रंथ नहीं बता सकेगा कि मैं कौन। आप ध्यान के साथ ये सुनना है और उस ब्रह्म को भी जाना है कि भागवत का सार तात्म नहीं, क्योंकि हम इसी चीज में भूले भटके हुए हैं। और इसे लेकर के हमें ये भरमाया जाता है कि देखो सुंदर साधी सतगुरु देवचंद जी ने 14 वर्ष तक भागवत सुना था और आज के तात्म मिला, बिल्कुल गलत। कुछ भी भागवत नहीं बता सकी। जो आकर के राजी ने देवचंद जी पर प्रश्न किया, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब सावचेत होकर के सुनिए, जब 11 वर्ष की आयु हुई तो मन के अंदर ये विचार आया, अंदर से ये तड़प लगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये दुनिया किसने बनाई है, और इस दुनिया को जो बनाने वाला परमात्मा मेरा भटका रहे, वो रहता कहां है। इसकी खोज करने के लिए अब सबसे पहले उन गांव के अंदर ही जाते, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े मुरब्बी लोग जो उस उम्रकोट गांव में रहते थे, उनके पास देवचंद जी गए और सबने एक ही बात का निर्णय करके बताया कि जिस परमात्मा को तुम ढूंढना चाहते हो वो कहीं इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं है, वह कण कण में व्यापक। ये बताया दुनिया वाले के सर्वव्यापक वो कण कण में परमात्मा बैठा हुआ है, वो कहीं दूर नहीं है। तब देवचंद जी ने निर्णय लिया कि जो वस्तु सब जगह पर मिल सकती है, हर जगह पर वो व्यापक है, पिंडे सो ब्रह्मंडे, पिंड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के अंदर भी है, जल के अंदर भी है, थल के अंदर भी है, कण कण में है, ये दुनिया के धर्म वालों का निर्णय आज भी है। भले वो वेदों को पढ़ते हैं और मुख से उच्चारण करते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, फिर मिथ्या जगत के ही कण कण में बताते हैं कि परमात्मा वो ब्रह्म जो है कण कण में बैठा हुआ है, इससे आगे कोई दुनिया का बशर जा नहीं सकता। अब यही बात देवचंद जी ने भी निर्णय लिया कि जब परमात्मा जिसको मैं मिलना चाहता हूँ अवतार को, वो कण कण में बैठा है, तो जो चीज एवरीवेयर मिल सकती है, एवरी मार्केट में मिल सकती है, हर बाजार में मिल सकती है, कहने का मतलब हर मंदिर में मिल सकती है, स्थान पर मिल सकती है, तो उसको मिलना कुछ भी मुश्किल है। या तो होना कभी एक चीज एक ही जगह पर निर्णय है कि अभी इसी जगह मिलती है और कहीं नहीं। वो सब ने क्या बतलाया कि जय देवचंद्र जिस परमात्मा को तुम ढूंढना चाहते हो वो सर्वव्यापक है, एवरीवेयर है, कण कण में है, इसलिए तुम्हें परमात्मा ढूंढना कोई कठिन नहीं। इस चीज का सार निर्णय लेकर के अब उसी गांव के अंदर एक मंदिर है, शाम लेकर पिंगल शाम की मूर्ति है, उसके अंदर रात्रि को 2 बजे उठते हैं, घर से लोटा लेकर दंत धामन की काज के भी मंदिर में जाना है भगवान के, तो हाथ धोके तो जाना चाहिए, ये तो एक मानवता के क्या, इसको सीखने सिखाने की जरूरत नहीं होती। घर से लोटा और डोरी जल खींचने के लिए बाहर गांव के जाना कुआं था, वहां रोज रात के 2 बजे उठ के जाते, देख क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर के सीधा ठीक 3 बजे मंदिर में जाते, तब तक तो पुजारी महाराज भी उठे नहीं होते। अब 3 बजे से लेके 6 बजे तक एक पहर 3 घंटे रोज एवरी डे किसी किस्म का उसमें जो है नागा नहीं किया है, सच नहीं। नहा धो के मंदिर में जाना, एक परिक्रमा लगा के आना और मूर्ति के सामने खड़े होकर के कहना कुछ नहीं, दंडवत प्रणाम करना और फिर उठ के खड़े होना, कहना भगवान जी महाराज प्रणाम, फिर परिक्रमा लगाना और फिर प्रणाम करना, फिर परिक्रमा लगाना, फिर दंडवत प्रणाम, फिर परिक्रमा करना, फिर दंडवत प्रणाम, एक पहर रोज और 4 साल करते रहे, उस भगवान का मुख नहीं उगड़ा कि इतना भी कहते हो कि प्रणाम। लोग हमारे झंडे लेके भागे जाते हैं, डकौर मूर्ति विष्णु भगवान के पीछे, गणेश शंकर के पीछे, गए कसौटी करी दुल्हना, सोबी वास्ते हम संयम। लोग कहते हैं कि हम हर साल विदक साफ सुनते हैं, एक किस्म मौसम की विदक है, अगर एक बार विदक को समझ लो, सुनना तो सारी उम्र सुन लिया लेकिन सुनने पर जरा भी मगन में बात बैठी होती तो आज गणेश की मूर्तियां हमारे घरों में, मुझसे बोलो जरा और क्या रहने वाले को पता है, अगर ये विदक साहब को हमने समझ लिया होता तो क्या गणेश की मूर्ति घर में बनाने की जरूरत पड़ती, कभी भी तक नहीं समझी अभी तक। इसलिए जागरण अभियान में पहले मूल मुद्दा विदक साहब का यूं दोषों से रखा जाता है। 4 वर्ष तक बराबर देवचंद जी महाराज हमारे श्यामा महारानी सतगुरु महाराज मूर्ति की 3-3 रात पर गरिमा लगाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, कुछ मांगते नहीं है, खाली कहीं जो भगवान परमात्मा कण कण में व्यापक है तो मंदिर तो खासकर भगवान का घर है और मूर्ति भी बनी हुई है, उस मूर्ति के सामने नमन करते हैं। एक बार नहीं 3 कला के अंदर कितनी बार परिक्रमा लगाई होगी और दर रोज हर परिक्रमा के बाद दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं, पर उस भगवान की मूर्ति ने एक बार भी मुख खोल करके प्रणाम का जवाब अब दिन में शांति होगी क्या, दरार होगा कहीं। 4 वर्ष तक बराबर संत साथी ऐसे करते रहे, जब उस भगवान ने जवाब नहीं दिया तो मन को करार चैन नहीं पड़ रहा। अब मुसीबत उधर और क्या थी कि रेती रेती का इलाका जंगल था, कोई साधु महात्मा भी उधर चर्चा सत्संग सुनाने आता नहीं है क्योंकि वहां कुएं का पानी 200 फीट 250 फीट पानी गहरा होता है। आज भी जाके देखिए, आज आज 40 वर्ष हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गया, भारत सरकार भी अभी तक पानी का पीने का प्रबंध वहां नहीं कर सकी। रेलगाड़ी की वैगन पानी की आती है और उसके द्वारा फिर रूट पर पानी लाद करके गांव में और पछड़े हुए इलाकों में अब पानी पहुंचाया जाता है। उस मारवाड़ के देश में और उमरकोट गांव में शर्मा जी को उतार के राजीव दादा के लिए कर सुमरण राजी कहां से राजी मिले, जहां कोई सत्संग सुनाने वाला संत ही नहीं पहुंचता। बिन सत्संग विवेक न हो, आप सत्संग करने ही सुनाने को नहीं आता, चर्चा सुनने के वास्ते को नहीं आता, तो आप उगड़ेगी कहां से और अपने आप को कैसे जगाएंगे, कैसे धनी की पहचान कराएंगे। बिन सत्संग के ज्ञान लाएंगे कहां से, तब क्या हुआ। मत्तू मेहता जी ने जब लिखा कि भाई अब लड़के की आयु कितनी हो गई, चुपचाप बैठे हो, मैं तो पूछूंगा। एक आले भाई, आले भाई की चर्चा थोड़ी होनी कि एक पड़ा जाए और एक ठोका ठोकी करता जाए, वो समझ नहीं। 11 वर्ष के थे मन में विचार उपजा, अब 4 वर्ष हो गए, तो गए कितने वर्ष हो गए, 15 वर्ष की आयु हो गई, लड़का नौजवान हो गया। जब नौजवान लड़का हो गया तो बाप को तो अपने स्वार्थ के मतलब है, उसको क्या मतलब इसको भगवान मिले या ना मिले, पिता को क्या स्वार्थ रहता है। भाई लड़का अब नौजवान हो गया है, इसको काम करे लगाना चाहिए, क्योंकि एक एक लड़का है उनके घर और कोई संतान तो है नहीं, तो हर माँ बाप चाहता है कि लड़के को बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और काम धंधे रोजगार में डालो, ताकि बुढ़ापे में काम आवे। स्वार्थ की दुनिया, ये सब संसार चक्कर स्वार्थ का है। क्यों पढ़ाते हैं, क्यों लिखाते हैं, क्यों पढ़ा करते हैं, ताकि बुढ़ापे में हमारे काम आवे। मेहता जी के मनुष्य थे, अब जब 15 साल के देवचंद जी हो गए तो उनको एक वक्त अपने साथ ले गए। अब क्यों, क्योंकि मेहता जी क्या कार्य करते थे, मारवाड़ देश से बैल ऊंट और घोड़े खरीद कर कच्छ में जाके बेचा करते थे, ये उनका धंधा था, ये रोजगार करते थे। अब वो जाने लगे कि देवचंद जी को भी साथ ले जाऊं, तो एक बार देवचंद जी को अपने संगत स्वदेश में ले गए। अब कच्छ में भी भोज नगर गांव में पहुंचे, जब वहां पर पहुंचे तो पिताजी को तो ये लागनी थी कि जो 10-15 ऊंट घोड़े हैं ये कैसे बेचे जाते हैं, ये ढंग में देवचंद जी को सिखाऊं। तो देवचंद जी ने कहा, पिताजी पहली बार आए हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि जब दूसरी बार आएंगे तब ये ऊंट घोड़े का चक्कर। अब पिताजी आप लोग दिखाई दे रहे थे, पिताजी आज बेटा अच्छा बेटा तुम दो तीन दिन घूम फिर ले। अब देवचंद जी ने घूमना फिरना क्या था, उन्होंने देखा कि भोजनगर के अंदर गली गली में मंदिर है और मंदिरों में भगवान की चर्चा हो। अभी भगवान भाई अभी राजी अभी किसकी चर्चा, भगवान की चर्चा हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में जो कुछ भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो ही अच्छा। तो अब पिताजी उनको लेके कहा गए थे, पिताजी के जो गुरु हरदास जी महाराज रहते थे उस मंदिर में जब देवचंद जी पहुंचते हैं तो वहां चर्चा तो बाल मुकंदर और बांके आया काम के नहीं, दोनों की चर्चा सुनी। दोनों कहाँ रहते हैं बोलो, बाल मुकंद कहाँ रहते हैं, अव्यापृत में, और बांके बिहारी सबरेपुरम में, दोनों के दोनों अखंड। अब उनकी बात की मां मूर्तियां और उनकी चर्चा होती ध्यान के साथ। 2-3 दिन जब उन्होंने चर्चा सुनी तो हरदास जी महाराज तो बड़े अच्छे भाव से और लगन के साथ चर्चा सुनाते थे। जब यहाँ से कुछ आगे का ज्ञान सुनाया तो देवचंद जी के मन में बड़ी चोट लगती है कि मैं किसी ना किसी तरह से यही रह लूं तो अच्छा है। अब 2-3 दिन के बाद पिताजी ने वो घोड़े ऊंट भेज डाले और कहा कि बेटा चलो घर चलो। अब देवचंद जी का मन तो करता नहीं है, लेकर पिताजी जबरी से उनको अपने घर उमरकोट ले गए। आप वहां जाए, वहां कोई सत्संग नहीं, कोई चर्चा नहीं, तो उनको उमरकोट ऐसे लगने लगा जैसे भूतों की नगरी है कि जिस जगह पर चर्चा नहीं है वो शमशान घाट। कभी हमें भी ऐसे लगा, बिना चर्चा नहीं होती, चर्चा के बिना हमें क्या भूतों की नगरी शमशान घाट ये लगा। अरे वाह, यहाँ हमारी गाड़ी है, यहाँ हमारा बगड़ा है, भूतों की नगरी कैसे हो सकती? क्योंकि हमारी लगन संसार माया में लगी हुई है और देवचंद जी का मन घर में लगता नहीं, अकेले लड़के, क्योंकि वहां सत्संग चर्चा को सुनाने आता नहीं है। सुंदर साहब जी अब वो बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी कारण से मैं उमरपुर को छोड़ करके भोजनगर में चला जाऊं और वहां सत्संग सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण करूं। अब वहां गांव में पूछने चले गए, जो भी मुरब्बी लोग बड़े थे उनसे पूछते थे, आप जाओगे भोजनगर, आप कच्छ देश जाओगे? क्योंकि आप कच्छ देश जाओगे, अब कच्छ देश कौन जाए? बिन काम के तो कोई घर से निकलता ही नहीं था। आज थोड़ा है, गाड़ी भी जा रही है, बस भी जा रही है, ट्रेन भी जा रही है, स्कूटर भी जा रहे हैं, और मेटा रोड भी मिल रही है, नहीं काम तो भी चलो दो दिन घूम फिर आएंगे, बनोड़ा चलो। अब वहां जाना ही कठिन था क्योंकि 80 किलोमीटर पैदल जावे पग से और फिर लौट के आवे, मगर ठिकाना नहीं होता था, इसलिए कोई घर से बाहर निकलता नहीं था। अब पता चला जी ने कह दिया, देख भाई देवचंद, अगर तुमने कच्छ जाना है ना तो राजा के लड़के का लग है, और वजीर जो है उसका खाना ब्याहने के वास्ते, क्योंकि इतना रेती में चोर डाकुओं का डर होता था कि राजा महाराजा भी डर के मारे लगन में अपने लड़के को भेजा नहीं करते थे, तो लड़के के तलवार खाना पूजन हो जाता था, वही रथ पहल पे रख के और सेना लड़की और लगन करके लड़की के साथ तलवार से फेरे दे देते थे, वो खड़े का पूजन करते थे, उसी का के साथ अंदर लोग लड़की को फेर भी देते थे, और फिर वजीर लोग ले आते थे तो लड़का लड़की को सिखा करता था। अब उसको पता चल गया कि वजीर खाना जाने के लिए जाएगा, तो देवचंद जी सीधा वजीर के घर चले गए, जाकर के पूछा, वजीर साहब क्या आप खांडा ब्याहने के लिए कच्छ जाने वाले हैं? कहने लगे हाँ। तो देवचंद जी कहने लगे तो मैं भी जाना चाहता हूँ। कहने लगे चलो चलने में तो कोई हरकत नहीं है, पर क्या तुम्हारे पास सवारी है? कहने लगे जी सवारी तो मेरे पास नहीं है। कहने लगे तो ना बाबा ना, फिर हमारे संग नहीं आना, तुम्हारे पास सवारी नहीं है, और हमने जो खांडा ब्याहने जाना है राजा के घोड़े होंगे और तो बड़े तेज दौड़ने वाले हैं, तुम पग से हमारे संग कैसे जा सकते हो? ना बाबा ना, तो रास्ते में कोई चोर डाकू तुम्हें पकड़ के मार डालेगा और सारा करंट मेरे ऊपर मेरी नाक कटेगी। ना 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 बाबा, हम तो बने रह जाएंगे। तो देवचंद जी ने सोचा मुझे इससे पूछना क्या है, ये चुपचाप तो जाएंगे नहीं, घर में बरात निकलेगी, राजा के लड़के की बरात निकलनी है, तो छोटे मोटे के जब ब्याह होता है तो इतना बैंड बाजा बजता है, तो राजे के घर ब्याह हो रहा है लगन, उसके लड़के का है तो कितने जोर शोर से बाजा बजेगा, जिस दिन बाजा बजेगा मैं पहले से ही तैयारी कर लूं। देवचंद जी घर चले गए, जा करके रस्ते का सामान चोरी चोरी एक जगह पर इकट्ठा बगुचा बांधने लगे, अब सोचने लगे कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, भाई लोटे की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, पानी कहाँ से पिएंगे? एक लोटा उठा के हम चेक कर लिया, अरे भाई पानी खींचेंगे किससे? एक डोरी भी लोटेगी ना, एक डोरी भी रखनी। फिर कहने लगे रोटी खाएंगे तो आटा किसने गूंथेंगे? एक थाल भी उठा के रख लिया। साग भाजी किसने बनाएंगे? एक लोहांडा भी उठा करके सिकेटरी भी रख ली, छत्ती भी रख ली, कड़छी चम्मच भी हिलाने वाला रख लिया। जो जो मगन में बात आती गई, भाई ये बर्तन की जरूरत पड़ेगी, बर्तन भी रख लिए। सोचने लगे बर्तन तो रख लिए, खाऊंगा क्या? आटा भी बांध लो, दाल भी ले ली घर से, चोखा भी ले लिया घर से, सब टोटली बांध बूंद के अपना सामान राशन भी रख लिया कि फिर जब पहुंच जाएगी देखी जाएगी। कपड़े जो दो तीन पोशाक पहनने वाली थी वो भी बक्से में डाल दी, और जो माता पिता ने पैसे चोरी नहीं जो दे रखे थे भी एक लड़का है वो भी उठा के धर ली, और सोचने लगे कि मैं अकेला चलूंगा रस्ते में, यदि चोर मिलेगा तो क्या करूंगा? तो एक खाना भी तलवार भी उठा के बच्चे के चोर आएगा खराब से मुकाबला करूंगा, मुकाबला होगा देखना कितना सुंदर मुकाबला होता है। आप बच्चा बांध और खड़े साथ रख ली, खाना भी साथ रख लिया, तैयारी पूर्ण कर ली। अब जिस दिन वो बरात को जाना था, माता जल्दी उठ गया नहा धोकर के, माता जी से कहना कि माता जी आज नाश्ते को दिल नहीं है, आज उनको भोजन खा लीजिएगा। भोजन कर लिया और सो गए। अब सो गए, अब देखते रहे, इंतजार करते हैं कि कब बारात निकले और मैं अपना बगुचा थैला हैंडबैग जो है वो लेकर के निकलो। उस समय बगुचा कहते थे, वाणी में बगुचा शब्द आता है, आजकल हैंडबैग कह लो, थैला कह लो, कुछ जो भी समझ में आवे वो अपना सामान जिसमें बंद करके तैयार कर रखा था। अब निकलने लगे तो क्या देखा कि कभी भी माता पिता खाट पर बैठ के प्रोग्राम बातें करने का करते नहीं। आज दरवाजा जो बाहर जाना था उसके अंदर बैठ के खाट डाल रखे और माता पिता बैठ करके गुप्त बातें कर रहे हैं। अब बाहर कैसे जाएं? अब रात ने कोई इंतजार तो करनी नहीं थी कि भाई देवचंद जी हमें तो हम दिखावे। उन्होंने तो बैंड बाजा को जोर से बजा और बस खंडा जो है बैल में यानी रथ में रख लिया और 200 सवार जो थे वो घोड़ों पर चढ़ गए। अब दे दमन दे दमन दम कच्छ के रास्ते पर भागने लगे, चले गए। थोड़ी देर के बाद 10-15-20 मिनट में जीत हो गए। माता पिता का बाता का जो प्रसंग था वो प्रकरण खत्म हुआ। वो उठ के एक बात हुए, अब देवचंद जी अपना सामान लेकर के बाहर आए। आकर के कोई मुरब्बी लोग मिले, उनसे पूछा कि वो रात किस रास्ते गई है। कहने लगे क्यों जी, मैंने भी साथ जाना था। बहुत लोगों ने कहा बाबा वो रात गए तो बहुत देर हो गई है, तुम अकेले उसके दीजिए, कैसे पीछे जाओगे। कह रहे थे चिंता तो मत करो। अब उन्होंने क्या किया था, एक नीमचा कमर को कपड़ा जो बांधा जाता है ना उसको नीम चमर वो भी एक कापट लिया था वो निकाला और जल्दी से अपनी कमर को कस के बांध लिया। क्योंकि सुंदर साजी यदि कमर में कपड़ा कस के बांध लिया जाए तो भागने में तकलीफ होती नहीं और थाक नहीं लगती हो, कभी भागना पड़े तो नीम चमर के भागना तो फिर छाक नहीं लगती है उसके साथ। देवता जी ने वो नीम जो था अपनी कमर में बांध लिया और बख्ता रखा कंधे पर और देखा कि वो घोड़े भागे चले जा रहे। बड़ी दूर से घोड़े तो नहीं दिखाई दिए, उनके दौड़ने से रेती जो पांव से उठ रही थी वो दूर से आंधी की तरह दिखाई दी। इतना दिल में सुंदर साजी दृढ़ निश्चय अपने प्रभु से धरी नहीं, अभी के अभी दुनिया भर से अपने भगवान की चर्चा सुनने की लाली, खाली चर्चा सुनने की लाली। हम लोग ओर में बैठे हैं और चर्चा सुनने के लिए 3 वक्त माइकों से और हल्ला हल्ला लगा रखा। अरे ओर सुंदर था, अरे लाभ ले लो, ऐसा समय नहीं मिलेगा। पर हमको फुर्सत बताओगे जब ये शिविर खत्म होगा कि हमने कितना कीमती समय जो था अवसर हासिल हुआ। देवचंद जी घर छोड़ करके भाग रहे किसके लिए, कि चर्चा सुनो और परमात्मा की पहचान करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। चर्चा सुनने के कारण से घर से बहाना बना के निकले, भागे, भागना शुरू कर दिया। अब 2 कलाक सूर्य बाकी था, वो जो रेती दिख रही थी जब तक तो सूर्य रहा सुंदर साहब जी, वो रेती बन उठती हुई नजर आ रही थी। भागे गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए, एकदम बिल्कुल रुके नहीं कि अभी घोड़े को पकड़ूंगा, अभी अपने संग मिल जाऊंगा। इतनी दृढ़ता, इतनी अड़िगता, इतनी लगन, इतनी तड़प है उस चर्चा के सुनने के वास्ते जो कच्छ देश में सुनी थी। अब क्या हुआ, सूर्य अस्त हो गया। जब सूर्य अस्त हो गया तो मारवाड़ देश डोंगर ही डोंगर का रास्ता, पहाड़ रेती के बालू कुछ भी दिखाई अब देता नहीं कि जाऊं तो कहां। पीछे घूम के देखा तो सीमा सरहद का कुछ खबर नहीं कि मैं घर से कितने किलोमीटर आ गया हूं। आज तो रोड पर लिखा होता है इतने किलोमीटर बाकी, इतने किलोमीटर और इतने किलोमीटर और। उस समय तो कोई पत्थर का चिन्ह था नहीं कि घर से कितने किलोमीटर आगे हैं और कितने किलोमीटर बाकी हैं। कोई आदमी जंगल में दिखाई नहीं देता कि जिससे मार्ग पूछ रहे हैं कि भाई कच्छ देश जाना है, कहाँ जाना है। और थोड़ी सी रात हो गई, इसलिए बोलिए ना ये ऐसी भी जंगल में आवाज आए तो इतनी भयानक लगती है, तो रात्रि के काम से इतना भयंकर आवाज आती है कि जैसे मानो शेर आ गया। अब देवता जी घबरा गए। किस लिए घबरा गए? एक तो दिखता नहीं, एक सीमा हद का पता नहीं, दूसरा रात्रि के समय जैसे ही रात होती है, कभी जयपुर जाने का मौका या मारवाड़ में जाओ तो रात के समय में आंधी अवश्य, संध्या जैसे ही होती है वहां रात्रि को आंधी का जोर चलता है। अब इतने जोर से आंधी और तेज हवा चलने लगी कि वो रेत के जो टीले है जो थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा था, वो टीला उधर को जाना है, तो आंधी जो जोर से लगती है वो रेत का टीला वहां से उठ के इधर ढेर लग जाता है और इधर वाला उठ करके इधर लग जाता है। अब शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं रही, बड़े हैरान हो गए, इतने क्या हुआ सुंदर शाह जी, जो कहते हो कि हमारी प्रणाली की मेर होती है वो मेर तो आकर के बराबर आप समय कहते हैं, लेकिन समय नहीं पता चलता कि मेर करते कैसे और आगे मेर करता है। हम इसके बताते हरि शंकर आया था ना, मेरे दादा ने साथ दिया ना मामा ने दिया, वो यहाँ बैठा है ना कृष्ण लाल, उसने मेरी बड़ी सहायता, हम सोचते हैं हमारी सहायता कृष्ण लाल कर रहा है, ये पता नहीं वो कृष्ण लाल बन के कौन आ जाता है। अब हरि देखा कि इतने संकट में इतने मुसीबत में कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, अभी आधा समय हम 10 बजे का हो जाता है, इतनी भाग होती है, मैं जाऊं कहां, अब क्या करूं, भागे चले जाते हैं। अब भागते भागते भी पेट में दर्द हो गया। अरे भाई इंसान ही तो है, कितना कोई भाग सकता है, 3 क्रॉस 4 क्रॉस हो गए भागते भागते पेट में छूट गया। अब राजीव बाबा कैसे ध्यान कर रहे हैं कि शर्मा वाले जी का पेट में आ है और ये पीड़ा कौन सहन कर गया, इतना भी संकट पूरा दिवस नहीं करते, दो मेरी संकट को दो सुख कैसा हो, इतना संकट देखते साथ ही क्या किया, आगे वो दूर से चले आए, कौन कौन राजी बना मोर मुकुट श्रृंगार करके नहीं बांस लेके नहीं आने, हाथ में बर्छा कमर में तलवार, मुसलमानों का रूप और सिपाही का भेष, मुझको दाढ़ी का रूप और मार लाल सुर्ख आंखें, आदमी खूब लंबा चौड़ा ठाड़ा और जैसे कोई पठान सिपाही बना हुआ हो। अब जब दूर से आता वही आदमी और चौड़ाई वाला देखा तो देवचंद जी ने क्या किया, एक डाकू मोको हमारे हाथ लूट लेगा, सोचने लगे सामान की तो कोई बात नहीं है, पर मैं जंगल में पुकारों में तो किसको पुकार कर मदद करो, किसी को आवाज भी सुनाई लेकिन नहीं, कभी जंगल में कोई है नहीं तो सुनी करो, इतना सोच ही रहे थे कि वो आदमी सामने अब जरा ध्यान के साथ भाई, कभी ऐसा वाक्य जंगल में हो कि देखो क्या होता है, सुनने में लगता है ना ऐसा, ऐसा जंगल में किसी के साथ मिलते तब देखो क्या लटकारा नजर आता है। अब वो स्वरूप सामने जब आ गया तो देवचंद जी घर से क्या लेके थे, तलवार लेके थे कि मैं चोर के साथ लड़ूंगा। अब वो जब सिपाही का भेष सामने आया, देवचंद जी का कद 15 साल का, आओ तो 6 फुट के लंबे चौड़े 40 जवान तंदुरुस्त, हाथ में भाला कमर में तलवार, आए लड़के पहले आकर के भवक लगा करके जोर से बोले, तो जो सांस देवचंद जी को था भी सही, सुंदर शादी अकेले में चोट लाखों को मिल जाए देखो जरा होता क्या, बस जो सांस था भी रंग पीला एकदम डर के हो गया, क्यों, क्योंकि दिल में बात ले ली कि ये चोर मुझको मारे जाने का बात छीन लेगा, ये मुझको छोड़ने वाला नहीं है, उसने एक अभी अकेला देख जाते देखिए इसके पास तलवार है कहीं निकाल के लगाई जाने में, पहले सांस से क्या मांगा है लड़के लाइव ये खादा किस लिए ले रखा लाइव। अब देवचंद जी ने तलवार कमर से निकाली, कांपते कांपते घर से तो लेके चलेंगे लड़ेंगे, अब कांपते हुए हाथों से कह रहे थे महाराज तलवार दे दी, राजी ने तलवार दे दी, क्या कहीं भाई उससे मैं आकर के कहीं कुछ कर ही ना डाले, कहने राम इधर आ कठी में क्या माल तुम्हारा है, उन्होंने ला कर बाप कठी डाली वो भी दे दी, राजी ने कठी पकड़ी एक बाजू में रख फिर कह दिया अब आ गया है तो पठान बच्चा हाथ में ले रखा मूछे और दाढ़ी है सिपाही का भेष है पर नूरी पटका कमर के लिए था उस पटी उठाए लगे लड़के लेट उसके ऊपर लेट लिटा भी रहे बाल भी डाल रहे जब तक के काट जाए ना इधर पर अरे जमीन सोचा कि अब सांस बाती अब लिटा के क्या करेगा अब लिटा के बस अभी मेरी गर्दन का पीना की बस और क्या करना सुंदर साथी देवन जी महाराज जब आगे बढ़े तो सांस जो आ भी रहा था बस गुटगुट के आ रहा था कि बस अब एक ही मिनट का मेहमान हूँ इस दुनिया में लेकिन वो तो मेहरबान पठान के रूप में आए हुए अब कैसे पता चले कौन है बिल्कुल वाणी में लिखा है कि तलवार खोल करके खड़े होकर में किसके दी हाथ में दई श्री राज राजीव के हाथ में स्पर्श वाणी के दिशा में आता अब उस पठान ने क्या किया क्योंकि राजी को पता है कि मेरे श्यामा महारानी के पेट में पीड़ा हो रही है इसलिए लिटाया अब बर्छा लेकर के आगे बढ़े और उन्होंने क्या किया बच्चे को धरती पर धरती पर टेक दिया आओ सुंदर साड़ी जिनको गैस ट्रबल होती है और गैस्ट की गोलियां खाती हो कोई जरूरत नहीं देखो राजी मुरा गैस दूर करी क्योंकि हवा भर रही थी पेट में बाहर से बातें गैस में को दूर करते लिटा दिया और क्या किया कि श्यामा महारानी यानी देवचंदी के एक पग की जड़ मूल में नस होती उसके ऊपर अपना पग दिया एक और उस भाले के वो जो भाला था हाथ में उसके सहारे से बोझ डाला जिसके ऊपर जान की जो जड़ में भाजी होती उस पर जब मोर से बोझ दिया तो पेट में जो नसें इकट्ठी हो रही थी वो सारी रसा हो गई और पेट का जो शूल था दर्द था वो हल्का तो देवचंदी से वो पठान पूछ रहा है क्या है लड़के तेरे पेट में दर्द था ना अब दिमाग घबराहट में ये काम नहीं कर सका भी इसको किसने बताया अब होश हो गया आदमी तब तो अब सोचा अभी इसको किसने बता दिया पर घबराहट में ये ख्याल कभी आ ही नहीं सकता और उनको ये ख्याल आ ही नहीं क्या लगे कि इधर का तो ठीक हो गया है और इधर का अभी बाकी है तब उधर से हटके फिर आए और इस बाजू में आकर के अपने भाले को टेका और फिर इस जाग की मूल में अपना पग दिया और फिर दोनों पग दोनों जाग में देके जब दबाया नसें बिल्कुल सीधी हो गई और पेट का सारा दर्द दूर हो गया कहने लगे लड़के अब बता कहने लगे अब तो कोई दर्द बाकी नहीं नीचे उतर गए कहने लगे अच्छा उठ के खड़े रहो खड़े रहो अब जब हो गए खड़े तो अपना नूरी पटका उठाया और देवचंदी की कमर में बांध दिया और गठड़ी उनकी राजीव देवचंदी की श्यामा महारानी की गठड़ी खुद उठोते अपनी पीठ पर गठड़ी डाल दी और कह दिया ए लड़के आओ चलो मेरे साथ साथ आओ अब देवचंदी ने क्या सोचा है तो चोर पर है रहम डाकू तो है तो डाकू पक्का क्यों डाकू है क्योंकि मेरी गठरी छीन ली है डाकू है पक्का पर रहम से डाकू मारा नहीं है इसने दयावान है अब घर ले जाएगा अनुमान लगा रहे हैं अपना कोई अब घर ले जाएगा बंदी खाने में रखेगा नौकरी कराएगा खेत में ले जाएगा या जानवरों को घास फूस के लिए बोलेगा चलो ये काम इसका करते रहेंगे मरने से तो बच गए तो कभी ना कभी तो परमात्मा की खोज करेंगे ये कह करके अब इतना समय से मिला था उनको अब क्या होता है ध्यान के साथ सुनिए एकदम फिर पठान कह रहा है लड़के तू बता घर से क्यों निकला था इसलिए घर से भागा था तू आ क्या है ना घर से एक ऐसी सामान चोरी करके लाया क्योंकि उनको खबर है उनसे कौन छोड़ सकता है धनी ना जाए तो जब दिल से खबर रहती उसने लगे अच्छा बता तो कितने भाई हो अब क्या मतलब लौकिक बातों में लगा क्या ताकि मेरे बारे में कुछ भी सोच सके नहीं कि मैं कौन इसलिए अब जब चल रहे हैं उनको लेकर के और लौकिक बातों के अंदर लगा दिया। पिता का पूछने लगे, माता के बारे में पूछने लगे, फिर जब ये बातें घर की घर हो गई तो संसार पूछ रहे हैं ऐसा ही होगा और कौन से नगर आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या है मतलब नहीं कहता है वो ज्यादा टेक्स्ट नहीं रहा है ज्यादा बोल रहा है बातें करते 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 करते। अब देवचंद जी जा तो रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं लग रहा कि मेरा पद धरती में लग रहा है। क्यों? जैसे आजकल आप टीवियों में देखते हो कि एक आदमी कैसे उड़ के आते हैं ऐसे ऐसे। अब देवचंद जी को यही मगर पता लग रहा था कि मेरा पग लग नहीं रहा है धरती पे, थकनी लग रही क्योंकि कमर में नूरी पटका लगा हुआ है। अब राजी महाराज उनकी गठी को ढो रहे हैं अपने कंधे पर और ले जा गए गए प्रातः का 4 बजे का समय, 10 बजे उनकी गठी उठाई थी, 6 घंटे बराबर अपने संग ले गए और कहां पहुंचाया? वो जो वजीर रथ ले जा रहा था बहन जिस पर खांडा था और 200 सवार घोड़े थे, वो एक बहुत खुला मैदान आ गया और कच्छ के भी नजीक पहुंच गए थे। देखा कि अब दिन निकलने वाला है, अब चोर डाकू का कोई भी डर नहीं है, तो उस वजीर ने भी अपने सवार जो थे घोड़े वाले उसको बोल दिया कि अभी आप घोड़े बहुत थक गए, कल शाम के 4 बजे बारात निकली थी, अब प्रातः काल 4 बजे 12 तलाब हो गए, घोड़े भी आकर जान रखते हैं, भाई ये थक चुके हैं, थोड़ा घोड़ों को भी आराम हो जाएगा, अपन लोग भी कुछ विश्राम कर लें और इतने में जो भंडारी लोग हैं ये कुछ नाश्ता बना डालेंगे, फिर चल नाश्ता लेके आगे चलें। अभी वो लोग अपना सामान डाला उतार ही रहे थे घोड़ों पर से कि इतने में राजीव राज ने देवचंद जी को लाके उनके नजदीक खड़ा किया और गाय रखे ये संभाल अपनी गठरी, अब मैं थक गया हूं संभाल और ये कमर वाला जरा पटका जो है ये मुझे दे दे, ले लिया गठरी भी दे दी, कहने लगे ये ले ले अपना खंडा तलवार भी ले ले, परम धामे जी जाती है ना कहने मेरी तलवार रखी थी ले ले तलवार भी ले ले हम गठरी भी ले ले हमारा पटका हमको वापस ले ले वो ले लिया। अब देखो कितनी चलाकी के साथ क्या कहना कि देवचंद मुझको तो लगता है जैसे तुम्हारे गांव वाले ही लोग हो तुम इनके पीछे तो आना चाहते थे ना, देखो ये वही वजीर नहीं है और वही तुम्हारे बहन है तुम इनके पीछे आना चाहते थे ना, देखो बड़ा अच्छी तरह से। अब देवचंद जी तो लग गए देखने, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो था ही, वजीर की आवाज भी सुनी लोगों की आवाज भी सुनी, 2 मिनट उनको देखने भी लगे और खान करने लगे, इतने में पीछे से गायब हो गए अब जब देख करके मुख किया पीछे और क्या कहने लगे हाँ जी यही है, अब हाँ जी तो कहा लेकिन वो वहां थे नहीं, जब देखा कि वो नहीं है अब लगे रोने, क्योंकि जब कोई पास रहता है ना तो क्या कहलाता है चोर है डाकू है व्यभिचारी है बदमाश है, कीमत का तब पता चलता है जब वो आंखों से ओझल हो जाता है। पहले देवचंद जी उनको क्या कह रहे थे चोर है डाकू है मुझको मार डालेगा ये तो बहुत गलत आदमी है, अब जब चले गए अब रोते हैं किस बात को लेके, और मेरा किसने पकड़ा था हाथ, अब रोते कि मेरे बाजू किसने थामा था, मेरी गठरी उठा के कौन लाया था, मुझे पेटी सूल किसने दर्द किया ठीक किया था, मुझे पटका बांध करके यहां उठा के कौन लाया है, यह तो वही मेरा भरदार है जिसको मैं खोजने के लिए चला। अब लगे रोने अपनी आंखों को गालियां निकालते हैं अपने कानों को भटकाते हैं और मेरी अंधी आंखों आए हुए भरदार को तुमने पहचाना नहीं और उसके चंडाल रात हो और मेरे कानों तुम्हें क्या हो गया था, क्या तुम मैं की बातों में लग गए, आए उसके धनी को तुम्हें पहचाना। बहुत देर तक रोए फिर आपका दिल क्या उसी तरह से जैसे सूरदास ने कभी कहा था हाथ छुड़ाए हाथ हो निर्मल ध्यान के मोहे दिल से डर जाओगे तो बड़ी मन कर, उसी तरह से देवता जी मैंने क्या रखते हैं कि भले मुझ पर कितना भी संकट आ जाए, मेरा वर्ताव कभी भी मेरे से जुदा हो नहीं सकता। ठीक है, आज मैंने उनकी अवसर नहीं की और वो मेरे हाथ से चले गए हैं, तो क्या हुआ? निश्चय करता हूँ कि जब तक मेरा प्राण रहेगा, मैं उनको सामने बिठा करके बातें करूंगा, पूछूंगा कि मुझे छोड़ के क्यों गए। ये हौसला, ये दृढ़ता, ये लगन, ये संकल्प दिल में लेकर के देवचंदी गठरी उठाई और आगे बढ़े, जहां वो वजीर और वो सेना प्राची लोग खड़े हुए थे। अब जब आगे बढ़े तो वजीर ने हुक्म दे दिया था, भाई बटे भाई को पहले के खड़ा हो जाओ, ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए, अपने को नहीं आएगी और कोई सामान और लूट के ना ले जाए। अभी देवचंद जी आगे बढ़े तो एक सिपाही खड़ा था, उसने आते टोका, अरे भाई कौन है तू, कैसे आ रहा है, खबर दार आगे कदम मत बढ़ाओ, मारेंगे नहीं तो। अरे भाई चिंता मत करो, मेरा नाम देवचंद है, उमरकोट गांव से मचो मैदा जी का लड़का हूँ और वजीर जी को साथ पूछ करके मैं आया था, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ। तब उस सिपाही ने हाथ पकड़ा और सीधा वजीर के पास ले गए। जब वजीर ने देखा कि देवचंद्र आ गए, हैरान हो गए, पूछा रहे देवचंद्र तुम्हारी सवारी कहाँ है? खेल सवारी कहाँ, मेरे पास तो कोई सवारी, मैंने तो आपको पहले बोला था मेरे पास सवारी नहीं। तो कहने लगे अच्छा तो आए कैसे, तुमको रास्ता किसने बताया? कहने लगे किसी ने नहीं। ये है, अरे हमको जरा चितवन के अंदर भी या वैसे ही राज्य मुरा की कृपा से कुछ इतनी सी चीज भी दृष्टि में आ जावे तो ज्ञान सुधी दस बीस को बताएंगे नहीं, ज्ञान सुधी चैन। इसलिए हमको वो दोबारा चीज मिलती नहीं, क्योंकि हम अपनी अकल से कहते वाह ये क्या मतलब हुआ, आत्म का संबंध फिर कैसा है? जब तक आत्म के संबंधी को ये चीज ना बताई जाए, आत्म का संबंधी जरूर है पर अपनी आत्म का सुख जय गर्दन कट जाए किसी को बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो दोबारा वो सुख नहीं मिले। इसलिए वजीर को साथ झूठ बोल दिया कि वजीर साहब जैसे आपके घोड़े भागते चले आए, मैं भी उसी तरह उनके कदमों पर कदम रख करके वायु की भांति दीवानों की तरह से चला आया, ना तुमने सांस लिया और ना ही मैंने सांस लिया। सारे हैरान हो गए, यार घोड़े थक के मार घुराद राजा का स्तर का कितना जवान ठाड़ा होता है, वो घोड़े थक गए, पानी पानी उनका पसीना हो गया और ये कहते हैं भाई इनके अंदर देवी शक्ति है, क्या है, हैरान तो सब हो गए। तो वजीर ने कहा अच्छा भाई देवचंद्र इतना ही बहुत अच्छा भला हो गया कि आपको रास्ते में किसी चोर डाकू ने मारा नहीं है, नहीं तो मेरी नाक कट जाती और मेरे लिए बड़ा संकट हो जाता। चलो आप तुम ऐसा करो, सामान रखो और आज ऐसे करना कि ये देखो हमारे पास भंडारी है, अभी भोजन बनाएंगे, नाश्ता तैयार करेंगे, तुम आज भोजन हमारे साथ लिए लेना। अब सुंदर साजी जरा ध्यान के साथ, देवचंद जी ने उत्तर दिया कि मैं किसी के हाथ का बना खाता। ये चर्चा जो है हमारे लोगों को बड़ी जल्दी अच्छी समझ में आ जाती है कि भाई सतगुरु देवचंद जी भी किसी के हाथ का बना नहीं खाते थे, हम भी नहीं खाते, हम भी अपना रहना चौका ढोला के चुहा चौका के अपना लकड़ी धोके चलाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या जिस समय सतगुरु देवचंद जी के जीवन में ये बातें थी, क्या उस समय उनको राजी मिले थे? क्या मिला था? बोला क्या कहते हो? नहीं मिला था। इसलिए वो लोग किसी का हाथ का बना खाना अच्छा नहीं समझते। तब वजीर ने बहुत आग्रह किया कि भाई आपको खाना ही पड़ेगा, अच्छा अगर आप किसी के हाथ का खाना नहीं लेते तो आज सीधा राशन का जो सामान है वो हमारे से ले लेना। तो देवचंद जी ने गठरी खोली, वजीर साहब ये देखिए दाल भी है, चोखा भी है, आटा भी है, घी भी मैं घर से लेकर के आया हूँ, तो ये मैं इनको बेचने के लिए थोड़ा लाया हूँ, ये मैं अपने खाने के लिए लाया, मुझे कोई चीज की जरूरत जो है नहीं है। कहने लगे भाई ये तुम फिर खा लेना, आज तो बाप आपको लेना ही पड़ेगा। अब देवचंद जी ने कहा जब आग्रह कर रहा है तो सूखा सीधा लेने में क्या आपत्ति, ले लो का झगड़ा डालना है। तो एक आदमी के लिए अब कितना सीधा चाहिए, मुट्ठी भर आटा चावल और जो कुछ भी दाल इत्यादि चाहिए थी ले ली। और क्या किया, ज्ञान के साथ है गोपनी ढूंढी, चौका लगाया, ईंटे ढूंढी, धो धा करके चौका उसका चूल्हा बनाया, फिर लकड़ी सूखी सूखी जंगल से ले आए, ला करके आग सजाई, और बर्तन तो सब पास में थे, पानी खींच के अपनी रसोई बना करके खिचड़ी और या जो कुछ भी उल्टा सुलटा बनाया होगा, क्योंकि कभी पहले थोड़ी रोटी बनाई, आज बना करके मोटा टिकट जैसा दिखा घर घुट के और तैयार कर लिया, थाली में दिया रख है, अब नगर जनक चौकी पर थोड़े ही बोलेंगे, किसको भोग लगाया, या सरूर को दीदार पाया तो कौन सरूर को, जिसको कहते थे डाकू, अब भोग उसको लगा रहे हैं कि हो मेरे डाकू, अब मेरे प्यारे डाकू आ जाते हैं कि कितने प्यार से आज भोजन बनाया, वो चोर को भोग लगा, जिस सरूर के दर्शन किए थे कि जिसने मेरे संकट में मेरा बाल पकड़ा है वही मेरा भरता, उसी का ध्यान लगा के उसी को ध्यान में चित्तौर में उसको अलगाया, और फिर प्रसाद लिया जो कुछ भी बनाया था, और थोड़ा अभी कमर सीधा किया कि इतने में ओबरात वाले सब लोग नाश्ता लेकर के तैयार हो गए। अब उस वजीर ने अपने ऊंट वाली सवारी से पूछा, भाई तुम ऊंटों पर दो दो जने बैठे हो और ऊंट का तो बलना इतना बड़ा होता है कि उसमें चार सवारी आराम से बैठ सकती है, इसलिए देवता जी को अपने संग ले लो। तो थोड़ा ही सफर बाकी था, उनके संग बैठ करके देवचंद जी कच्छ देश में पहुंचे। अब यहाँ कच्छ देश में जा करके उन्होंने वजीर को बोल दिया, वजीर साहब बस मुझे आगे नहीं जाना, मुझे अपने काम में मैं चला जाऊंगा, तुम अपने ब्याह में जा जाने जाओ। तो वजीर अपनी बरात लेकर के चला गया। अब देवचंद जी खोज करने के लिए धर्मों की, किस वास्ते ये विचार सारी चीजें करती है, सकल जगत के धर्मों का मथन करके